लगातार चार दिनों तक युद्ध करते हुए सौमित्र लक्ष्मण ने इंद्रजीत मेघनाथ का वध कर दिया। अपने प्राणों से प्रिय पुत्र मेघनाथ के वध का समाचार पाकर दशानंद के क्रोध के सारे बांध टूट गए, और इससे पहले कि उसके क्रोध का ज्वालामुखी अपनी विनाश लीला करता, प्रहस्त ने रावण को अपने क्रोध पर वश करने को कहा, क्योंकि अभी भी रावण का तर्कश खाली नहीं हुआ था। उसमें अभी एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र शेष था, और वो अस्त्र था पाताल लोक का स्वामी अहिरावण। अहिरावण देवी का महान भक्त था, और प्रहस्त को विश्वास था कि भले ही रावण के सारे अस्त्रों को राम ने कुंद कर दिया था, पर देवी के परम भक्त अहिरावण पर वश करना राम के लिए भी असंभव था।
मैंने आजीवन आपकी सेवा की है दशानन, और ये प्राण भी आपकी ही सेवा में जाएंगे, पर महाराज क्या इन सब के बदले में आप मेरी एक विनती भी नहीं सुनेंगे?
कहो क्या कहना चाहते हो?
महाराज युद्ध नीति कहती है कि महारथियों के होते हुए स्वयं राजा का युद्ध में जाना शत्रु का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। उसे लग सकता है कि बस विजय उससे सिर्फ एक कदम ही दूर है, और अभी हम इतने अकेले नहीं पड़े हैं महाराज।
क्या कहना चाहते हो? कुंभ और इंद्रजीत के बाद अब हमारा कौन महारथी शेष है?
अहिरावण लंकेश, देवी भक्त अहिरावण। अहिरावण हमारा वो ब्रह्मास्त्र है जो उन वनवासियों का सर्वनाश करके ही लौटेगा, और यदि आपने उन्हें इस महायज्ञ में आहुति देने का महान अवसर नहीं दिया तो उन्हें पीड़ा होगी कि दशानन ने उन्हें इस योग्य ही नहीं समझा। विचार मत कीजिए लंकेश, पाताल पति को उपकृत कीजिए।
प्रतिशोध की भीषण ज्वाला में जलते हुए भी जाने कैसे लंकेश ने प्रहस्त की विनती को अनसुना नहीं किया। वो उसके निवेदन पर सीधे पातालपुरी पहुंचा और पाताल पति को सम्मान देते हुए उससे निवेदन किया।
पाताल लोक के अधिपति अहिरावण, हम आज पहली बार तुमसे कुछ मांगने आए हैं।
आदेश करें महाबली लंकेश। त्रिलोक जी दशानन की सहायता करके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
वचन दो अहिरावण कि तुम किसी भी स्थिति में मेरी सहायता करोगे, विपरीत स्थिति में भी तुम मेरा साथ दोगे। वचन दो।
एक बार नहीं लंकेश, सहस्त्र बार वचन देता हूं। सूर्य और चंद्रमा अपनी गति बदल सकते हैं, अपना स्थान छोड़ सकते हैं, परंतु अहिरावण अपने वचन से विचलित नहीं होता।
रक्षवंश संकट में है अहिरावण।
असंभव, असंभव। ये क्या कह रहे हैं लंकेश? आप पे होते रक्षवंश संकट में पड़ गया, ये नहीं हो सकता।
मैं सत्य कह रहा हूं। अयोध्या कुमार राम के साथ युद्ध करते हुए हमारे समस्त योद्धा मारे गए, यहां तक कि हमारा पुत्र इंद्रजीत भी।
अनर्थ, महानर्थ। क्या राम अभी तक जीवित है लंकेश?
हम उसके वध के लिए ही तुम्हारी सहायता चाहते हैं।
मैं हाथों से देवी चंडिका की बलि चढ़ाऊंगा लंकेश। कहां है वो राम?
केवल राम की ही नहीं, उसके भ्राता लक्ष्मण की भी बलि देनी होगी तुम्हें।
तब तो देवी चंडिका और भी प्रसन्न होगी लंकेश। मैं अभी जाता हूं।
नहीं, अभी नहीं। अति उत्साह में हमने बहुत कुछ खोया है, कहीं तुम भी।
दशानन, क्या आपको मेरे बल और पराक्रम पर विश्वास नहीं है?
हमें अपने बल और पराक्रम पर भी ऐसा ही भरोसा था हे रावण, किंतु संसार केवल बल से ही नहीं चलता है, बुद्धि और विवेक भी आवश्यक है।
तू मेरा मार्गदर्शन करे।
तुम्हें अपनी माया का प्रयोग करना होगा। आज रात्र में तुम्हें राम के शिविर में पहुंचकर राम और लक्ष्मण का हरण करना है। शिविर में उन पर किसी प्रकार का बल प्रयोग किया तो हम उसी पल ये लड़ाई हार जाएंगे।
आपके आदेश का पालन होगा।
एक बात और, राम की रक्षा में हनुमान नाम का एक वानर है, उससे सावधान रहना।
एक वानर मेरा क्या बिगाड़ सकता है महाबली? यदि मेरे पांव के नीचे आ गया तो भी मुझे पता नहीं चलेगा।
वो साधारण वानर नहीं है आहे रावण, इसलिए किसी भ्रम में मत रहना। आज लंका की जो दशा हुई है उसका सबसे बड़ा कारण वो वानर ही है।
आपने उस वानर के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है लंकेश। मैं उस वानर से अवश्य मिलूंगा।
मिलना तो पड़ेगा ही, किंतु राक्षस वेश में भूल कर भी मत मिलना। और सुनो, तुम्हारा ध्यान उस वानर पर नहीं, अपने लक्ष्य पर रहे। जाओ, शिविर तक पहुंचने में रात्रि हो जाएगी।
जय श्री राम। महाराज सुग्रीव, क्या मेरे लिए कोई विशेष सूचना है?
हाँ पवन कुमार, आज प्रभु श्री राम के साथ संपूर्ण शिविर की सुरक्षा का भार तुम पर है। रक्षेंद्र विभीषण पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे। कोई भी विशेष सूचना तुम उन्हें दे सकते हो।
आप चिंता ना करें महाराज सुग्रीव, मेरे होते प्रभु श्री राम के शिविर में हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती।
अहि रावण लंकेश के कहने पर श्री राम के शिविर में पहुंच तो गया, किंतु शिविर में प्रवेश करने के पूर्व उसे रावण की बातों का स्मरण हो आया, विशेषकर वो बात जो उसने हनुमान के बारे में कही थी।
वो साधारण वानर नहीं है अहि रावण, इसलिए किसी भ्रम में मत रहना। आज लंका की जो दशा हुई है उसका सबसे बड़ा कारण वो वानर ही है।
पता नहीं कौन है वो उत्पाती वानर। लंकेश ने तो कहा था कि पहरे पर वही वानर मिलेगा और मुझे उसके पास मायावी रूप में जाना होगा, परंतु शिविर के मुख्य द्वार पर तो कोई भी वानर नहीं है।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
पवन पुत्र।
कौन कौन है?
मैं हूँ भरत।
क्या मैं आपसे मिल चुका हूँ भरत?
भूल गए पवन कुमार, आप संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के आकाश से जा रहे थे, तब आपसे हमारी भेंट हुई थी। भूल गए, मैं दशरथ पुत्र श्री राम भ्राता भरत हूँ।
ये सचमुच भैया भरत हैं या कोई मायावी? मैं सच्चाई कैसे जान सकता हूँ? महाराज सुग्रीव ने भी आज मुझे सावधान रहने को कहा है, पर मैं श्री राम से पूछने भी तो नहीं जा सकता।
क्या सोचने लगे पवन कुमार? मुझे अपने भ्राता श्री राम से मिलना है, मुझे मार्ग दीजिए। जाने किस हाल में होंगे मेरे भैया राम, मेरा मन बहुत व्यग्र है उनके लिए।
मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ भैया भरत, पर पहले ये तो कहिए कि अयोध्या में सब कुशल तो है?
सभी कुशल हैं, बस मुझे भ्राता राम के दर्शन हो जाए, इतनी सी कामना है।
किंतु अभी तो वो विश्राम कर रहे हैं महाराज, आप कुछ देर प्रतीक्षा करें, रात्रि के चौथे प्रहर में वो जाग जाएंगे।
मुझे अपने देवतुल्य भ्राता से मिलने के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हनुमान? मैं आपका सम्मान करता हूं, पर आप कृपा करके मेरे मार्ग की बाधा ना बने।
जय श्री राम। भाई भाई के बीच भला मैं बाधा क्यों बनूंगा महाराज? यदि आप प्रतीक्षा नहीं करना चाहते तो आप जा सकते हैं, जाइए। शिविर के पूर्वी क्षेत्र में प्रभु का निवास है।
धन्यवाद हनुमान। ये क्या, हनुमान ने उसे जाने दिया?
इसे रोको हनुमान, अभी रोको, अरे ये मायावी है।
अभी रोकता हूं रक्षेंद्र। ये क्या हुआ प्रभु, कैसा अनर्थ कर दिया मैंने, पर कहां चला गया वो मायावी?
कहां है वो मायावी?
पता नहीं रक्षेंद्र विभीषण, अभी तो वो यही था, आपका स्वर सुनते ही पता नहीं कहां अदृश्य हो गया।
मैं राक्षसों की माया विद्या से भली भांति परिचित हूं पवन कुमार, मैंने तो दूर से ही उसे पहचान लिया था।
किंतु पलक झपकते ही कहां चला गया वो?
वो अदृश्य हो गया हनुमान, ये अदृश्य होना भी एक माया है।
ओह, अब समझा, जाने कहां चला गया वो मायावी।
कोई बात नहीं, इतना तो स्पष्ट हो गया कि लंकेश के दूत शिविर में प्रवेश करना चाहते हैं। अब आप सावधान रहें, इस बार स्वयं आपके पिता श्री पवनदेव भी आ जाए तो उन पर भी विश्वास ना करें।
चिंता ना करें रक्षेंद्र, अब कोई भी आ जाए मैं अपनी गदा प्रहार से उसका चूरण बना दूंगा, अब मुझे कोई नहीं बहका सकता।
आपका भोलापन आपको भ्रमित कर सकता है हनुमान, मेरा निवेदन है कि आप कुछ भी करने से पूर्व मुझसे परामर्श अवश्य ले लें, मैं आसपास ही रहूंगा।
मैं आपको वचन देता हूं रक्षेंद्र कि साक्षात प्रभु श्री राम भी आ जाए तो मैं आज की रात उन पर विश्वास नहीं करूंगा, और आपसे विचार करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दूंगा।
बस बस, मैं यही सुनना चाहता था हनुमान।
रक्षेंद्र विभीषण के चले जाने के बाद हनुमान के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई। कुछ ही देर बाद ही श्वेत वस्त्र धारण किए दिव्य मुख मंडल वाला एक तेजस्वी महात्मा हनुमान के पास आया। उसके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में एक ग्रंथ था। मुखमंडल की दिव्यता देखकर हनुमान ने उनके सामने श्रद्धा से शीश झुका दिया। महात्मा ने श्री राम को आशीर्वाद देने और युद्ध में उनके विजय की कामना करने की इच्छा प्रकट की, और हनुमान चाहकर भी उसे रोकने का साहस नहीं कर सके।
रामा